हाय, मेरा नाम शिवानी है और आप मुझे सुन रहे हैं आदर्श शिवानी पर, जहां हम रूबरू होते हैं तमाम कविताओं, कहानियों और रचनाओं से। यदि आपके पास भी आपके लिखी कोई रचना है जिसे आप प्रकाशित कराना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप साक्ष पर। तो बिना अधिक समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की कहानी विदाई पर, जिसे लिखा है प्रज्ञान शुक्ला जी ने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, शायद जीवन के उन सरोकारों को समेटने का आखिरी मौका, जो शायद तमाम उम्र बहुत सी व्यवस्थाओं के बीच अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद कभी फुर्सत के पदों में अपने से किसी कम उम्र के राही को देखने के बाद आपके चिर चिंतन से निकल कर आपके आलोक पटल पर छा जाएंगी। कच्ची उम्र से परिपक्वता के इस सफर में हम अपना कोई हमराही हम सफर ढूंढ ही लेते हैं। तमाम पवित्र पलों को आप किसी के साथ जीना चाहते हैं, मगर आप उन पलों में उन्हें कुछ कहकर खोने से डरते हैं। कहने और ना कहने के इस ऊपापोह में जिंदगी पेंडुलम की तरह झूल रही होती है, पर वक्त हमेशा की तरह बस गुजरता है। सुधीर सोचता है कि कितनी विकट परिस्थितियों में पढ़ाई करने के बाद आज उसे एक बड़े संस्थान में दाखिला मिला था। गांव से आया सुधीर मिजाज से काफ़ी देसी व अक्खड़ था। आंखों में अपने लक्ष्य को पाने का सपना और कंधों पर कुछ बड़ा करने की उम्मीद, इसके साथ एक जिम्मेदारी लिए हुए विश्वविद्यालय में आया। कैसे पढ़ाई के साथ साथ वर्तमान को जीना धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में बस गया, कैसे गांव से आने के झिझक कुछ दिनों में उसने अपनी प्रतिभा के दम पर खत्म कर लिया। शहर के रंग में ऐसा समाया कि ऐसा लग रहा था कि वो सदा से शहर का ही हो। शायद शहर की हवा होती ही ऐसी है, एक बार जिसको लग गई फिर वो भूल ही जाता है अपने गाँव, मिट्टी और भावनाओं को। यही उसको जान से ज़्यादा प्यारा दोस्त संतोष मिला, जिसने उसके जीवन की परिभाषा ही बदल दी। सिर्फ एक रूम पार्टनर से शुरू हुआ ये रिश्ता आज जिंदगी और सांस की तरह गहरा हो गया है। संतोष और सुधीर शायद एक दूसरे की पूरक बन गए हैं, हर पीड़ा हर दुख में साथ रहते हैं। सुधीर याद करता है कि कैसे उसे बुखार होने पर संतोष ने माँ की तरह उसका ख्याल रखा था, पूरी रात जागकर पट्टी बदलता रहा, पूरे शरीर की मालिश करता रहा, ना कहने पर भी माँ की तरह जबरन खाना खिलाता रहा, और कभी निराश होने पर या पैसा ना होने के कारण एक पिता की तरह, मैं हूँ ना, तो परेशान क्यों हो रहा है, तो पढ़ाई कर, कहकर हौसला देता था। कभी भाई की तरह लड़ता था तो कभी बहन की तरह शिकायत करता था, पर प्यार बहुत करता था। विश्वविद्यालय में ही सुधीर की मुलाकात निशा से हुई, जो कि एक काफ़ी रईस परिवार से संबंध रखती थी। उसके चेहरे का तेजपन, चमक व गंभीरता उसके व्यक्तित्व को काफ़ी उच्च कोटि का बना देती थी। सुधीर और निशा की बातें कुछ ही मुलाकातों में होने लगी। निशा शायद सुधीर की विद्वता से प्रभावित थी, जिसने कक्षा में देसी लगने के बावजूद शायद अपने ज्ञान के दम पर एक विशिष्ट स्थान बना ही लिया था। निशा को अब लगने लगा था कि व्यक्तित्व और ज्ञान परिधान या किसी दिखावे के मोहताज नहीं होते, ज्ञान के लिए चाहिए तो सिर्फ लगन और मेहनत। निशा सुधीर से काफ़ी प्रभावित रहने लगी। वो शायद जब किसी इंसान का पूर्वमान गलत सिद्ध होता है तो एक आकर्षण जो शायद पछतावे के कारण पैदा हो जाता है, जो सामने वाले व्यक्ति से आपको बात करने पर मजबूर कर ही देता है। आप सामने वाले के बारे में और जानना चाहते हैं, शायद अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए या खुद के अंतर्मन को संतुष्टि देने के लिए। जो भी कारण हो, निशा सुधीर का विश्लेषण करने लगी। निशा और सुधीर की बात विषय से शुरू होकर दोस्ती पर टिक गई। दोनों के बीच एक अलग सा आकर्षण रहने लगा। निशा को कॉलेज में ना देखकर सुधीर परेशान हो जाता, उसे कुछ अच्छा न लगता। उसकी नजरें उस एक शख्स को ढूंढने लगती और मन में प्रसन्नता का स्थान खिन्नता ले लेती। कभी यूं ही अकेले में मुस्कुराने लगता तो कभी यूं ही खोया सा रहने लगता। इंसान भी गजब होता है, जरा से देर के प्रभाव को स्थायी समझ लेता है और फिर वर्तमान की बजाय बस उन पलों की आकांक्षा में खुद को डुबोने लगता है। सुधीर, जो प्रेम के बावजूद निशा से कुछ कहने से डरता है कि कहीं निशा और उसके बीच में दूरियां ना आ जाएं, पर निशा जो शायद अपने मनोभावों को अपने चेहरे की गंभीरता से ढक लेती थी, सुधीर के लिए उसका एक विशेष समर्पण उनके रिश्तों को खास बनाता था। प्रांगण में अकेले में बिताए हुए वो पल जो शायद सुधीर कभी हीरे मोती देकर भी नहीं खरीद सकता, वो पल जिसमें सुधीर चाहता था कि आज समय रुक जाए, उस पल जब शायद घड़ी तेज चलती थी और जिंदगी मध्यम, शायद एक अलग ही अलहरता रहती थी उस समय में, उस पल की सुंदरता, उस पल का आनंद, एक उन्मुक्त परिवेश में उनके बीच का संवाद एक अलग ही आलोक का निर्माण करते थे, जिनमें कई वादे होते थे, कहीं भविष्य की रूपरेखा तो कहीं वर्तमान का विश्लेषण और कभी भूतकाल की बातों से जिंदगी के सबक। शायद अब जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, अब घड़ी ही नहीं जिंदगी भी तेज चलने वाली थी। संतोष, जो सुधीर की मनोदशा को समझता था, मित्र की इस दुविधा का हल निकालना चाहता था, पर सुधीर ने कसम देकर उसे मना कर रखा था। संतोष सुधीर से कहता है, क्या सोच रहे हो, आज कॉलेज नहीं चलना? संतोष की इस आवाज के साथ सुधीर की तंद्रा टूटी और उसने निश्चय किया कि आज निशा को वो अपने अंतर्मन की सारी भावनाएं बताएगा। इसी के साथ सुधीर और संतोष आज कॉलेज के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तभी संतोष उससे बोल पड़ता है, सुधीर, क्या तुम निशा से अपने दिल की बात बोलोगे आज? सुधीर काफी संजीदा रहने के बाद कहता है, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। सुधीर और संतोष दोनों मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में आज एक विशेष प्रकार के चहल पहल के बीच एक अलग तरह का उत्साह मन में था। हर व्यक्ति हर जगह मौजूद रहना चाहता था। इस उत्साह के बीच में शायद एक वास्तविकता थी कि आज के बाद शायद इस निश्चलता का अंत हो जाएगा, उसके बाद के मिलन पर सामाजिक ताना बाना हावी हो जाएगा जो शायद कभी किसी उत्साह का कारण बना हो। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच सुधीर निशा को कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। निशा जो कि आज शायद दिन की रोशनी में अपनी छटा बिखेर रही थी, उसके चेहरे की लालिमा शायद उस कमरे में एक विशेष प्रकार की प्रदर्शनी बनी थी, जिसे शाम को सूर्यास्त के बाद सायंकाल की वजह से कालिंदी की सतह पर फैली हुई लालिमा। सुधीर के नज़र भर देखने के बाद निशा सुधीर से कहती है, कहो क्यों बुलाया है मुझे? सुधीर जो शायद अभी अपनी खामोशी के पलों में निशा से दिल की बात बोलने की हिम्मत कर ही रहा था, कहता है, निशा तुम्हें पता है आज कॉलेज का आखिरी दिन है और शायद मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो मैं सोचता हूँ कि अब हमारा रिश्ता ऐसा हो गया है कि तुम मेरी खामोशी को समझ सकती हो, मेरी आंखों में उठ रहे शोर को देख सकती हो, मेरी पीड़ा को समझ सकती हो। मुझे लगता है कि हम तुम मिलकर शिल्प कर सकते हैं एक नए और कभी ना ख़त्म होने वाले साथ का। हम तुम मिलकर बना सकते हैं एक सुखद अप्रतिम वर्तमान और भविष्य का। बोलो निशा। सुधीर के चेहरे से अधीरता साफ झलक रही थी। निशा बोलती है, सुधीर मुझे लगता है कि हम किसी कहानी के हिस्से हैं और कहानियाँ अक्सर पूरी नहीं होती। जिस पर सुधीर बोल पड़ता है, पर कहानी खत्म होने पर भी यादें जिंदा रहती हैं निशा, जो शायद इच्छाएं बनकर जीवन भर सताती हैं। निशा कहती है, कभी कभी बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु छोटे छोटे मनोरथों का बलिदान किया जाता है, तो मैं अपने लक्ष्य पाने के लिए दुनिया से दूर एकांत में जाना चाहती हूँ सुधीर, और एक कठिन तपस्या करना चाहती हूँ जिसकी आहुति शायद हमारा प्यार है। पर लक्ष्य तो अपनों के साथ भी पाए जा सकते हैं, किंतु तुमने मेरे प्यार की आहुति देकर शायद इसे अमर कर दिया है। अब मुझे इसकी अमरता पर कोई संदेह नहीं रहा। जाओ निशा, तुम अपनी तपस्या करो। ये कहकर सुधीर घर चला जाता है। शायद उसकी आंखों में पानी के मोती थे जो बता रहे थे पुरुष पत्थर नहीं होते, बस उनके आंसू जो शायद उन तमाम पीड़ाओं की पराकाष्ठा को पार कर आने में सोख से जाते हैं, जिनमें उनके माँ बाप, भाई बहन और दोस्त का चेहरा उनकी चिंताएं सालती रहती हैं और उनकी जगह भविष्य की जिम्मेदारियां ले लेती हैं, फिर कभी रोने का समय ही नहीं मिलता। सुधीर और संतोष एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। सुधीर को लगता है शायद कभी कभी एक शख्स में ही पूरी दुनिया समा जाती है, या हम अपनी भावनाओं में इस तरह बह जाते हैं कि दुनिया को देख ही नहीं पाते। पर कुछ समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ मरीचिका थी। कभी कभी ये समाज समझने में निकल जाती है। सब अपने अपने ज़िंदगी के सफ़र पर निकल लेते हैं, जो शायद वास्तविक मायनों में कर्तव्य पथ से होकर जाता है। 20 वर्ष बाद आज कॉलेज का रीयूनियन था। सब आ रहे थे, तमाम चहल पहल और शोर शराबा था। सुधीर के बारे में किसी को पता न था। सब अपने कारोबार, काम, बीवी बच्चों में इस तरह मशगूल हो गए थे कि किसी को किसी की याद ही नहीं रही। तभी निशा की नज़र, निशा जो कि अभी एक स्टार्टअप में काम करती है और किसी बड़े अधिकारी से उसकी शादी हो चुकी है, उसकी नज़र किनारे में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे संतोष पर पड़ती है, जो इतनी खुशी के माहौल में भी परेशान था। निशा उसके पास जाती है। और संतोष, कैसे हो? संतोष भी एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन चुका है, जो उसका उत्तर देते हुए कहता है, हाँ बस ठीक चल रहा है, तुम बताओ। तुम परेशान क्यों हो और सुधीर कहाँ है, आज आया नहीं है क्या? निशा ने पूछा। जिस पर संतोष उससे कहता है, हाँ बस आ रहा है, रास्ते में है। थोड़ी देर बाद सुधीर रियूनियन पार्टी में आता है। सुधीर को देख उसके पुराने मित्र उसकी तरफ आते हैं। सब देखते हैं कि सुधीर के बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, मानो व्यस्तता के कारण समय ही ना मिला हो उन्हें समेटने का। उसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी थी, पर चेहरे पर आज भी वही 20 साल पुराने सुधीर का तेजपन था। सुधीर की यह हालत देख निशा के मन में एक अशांति सी भर जाती है। वो उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार मन ही मन खुद को मानने लग जाती है। वो एक टक उसकी आंखों में देखते हुए उसके समीप जा खड़ी होती है, फिर वही पुराने अंदाज में आंखों में ढेर सारा स्नेह भर के उससे पूछती है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी सुधीर? मैंने कहा था ना, अभी त्याग करो। तुमने देख लिया ना क्या हासिल हुआ? तुम शायद मेरी इच्छाओं पर खड़े ही नहीं उतरे सुधीर। सुधीर के चेहरे पर एक स्थायी भाव था जो हर स्पष्टीकरण से ऊपर है। वो निशा को आज 20 वर्षों के बाद देखने के कारण थोड़ा संजीदा सा हो गया है। वो निशा के प्रश्न को सुनकर मुस्कुरा कर कहता है, निशा तुम आज भी शायद समझ ही नहीं पाई मुझे। मेरा ये रूप, ये लंबे बाल, ये लंबी दाढ़ी मुझ पर थोपा नहीं गया है, इसे मैंने खुद चुना है। तभी सुधीर का परम मित्र सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबका परिचय सुधीर से कराते हुए कहता है, मिले सुधीर मल्होत्रा से, जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय का नाम काफ़ी ऊपर उठाया है। सुधीर एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और निसार ग्रुप का ओनर भी। शायद सुधीर सही मायने में गुमनामी में चला गया था, इन रिश्तों के व्यापार से बहुत दूर, सच्चे प्यार की पवित्रता को अवलोकित करते हुए आज भी उन्हीं यादों के सहारे अकेले जी रहा है। शायद अधूरी खत्म हुई कहानियों की इच्छाओं में एक उम्दा कलमकार की तरह, जो सिर्फ गम को चुनता है क्योंकि उसे खुशी अस्थायी लगती है। कमाया हुआ पैसा सिर्फ लोक कल्याण में दिया जा रहा है और पा रहा है अपने हिस्से से भी अधिक प्रेम और आशीष। तो अभी आपने सुनी प्रज्ञान शुक्ला जी की लिखी रचना विदाई। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई रचना है जिसे आप प्रकाशित कराना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ग्रुप जिसका नाम है साक्षी। फॉर मोर फ्रेश पॉडकास्ट कीप लिसनिंग टू अस एंड स्टे ट्यून्ड। दिस इज शिवानी यादव साइनिंग ऑफ।